ओम शांति। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि किन्होंने दादी जानकी को देखा है। काफी है, किन्होंने नहीं देखा है। इसका मतलब है कि आप लॉकडाउन के टाइम में ज्ञान में आए। दादी की कई सारी ऐसी जीवन कहानी कहो या दादियां जो भी है हमारे लिए एक खुली किताब की तरह थे, और वो किताब के पन्नों से आप जितना भी सीखना चाहो आप सीख सकते हो। दादियों ने यज्ञ का इतिहास बनाया। हम सभी जानते हैं कि जब बाबा ने यज्ञ की स्थापना की थी तब ये दादियां बहुत छोटी छोटी थी, और वो छोटी छोटी दादियों ने कैसे इतना बड़ा यज्ञ स्थापित किया। करण करावनहार बाबा जरूर हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बहनों में बाबा ने कितना विश्वास रखा कि यही कन्याएं यही माताएं आगे चल करके विश्व परिवर्तन का कार्य करेगी, यही विश्व के आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं। छोटे बच्चों में इतनी उम्मीदें रखना, और वो भी उस समय कि जिस समय समाज में बहनों का स्थान कुछ था ही नहीं, और वो बाबा ने करके दिखाया कि कैसे माताएं बहनों को बाबा ने निमित्त बनाया इतने बड़े यज्ञ की रचना करने के लिए। जिस समय बाबा अव्यक्त होते हैं उस समय केवल भारत में 300-350 सेंटर्स थे, और बाद में जगदीश भाई को ख्याल आता है कि विदेश में भी सेवा होनी चाहिए, और ये बात उन्होंने दादी दीदी के आगे रखी। तो फिर दादी दीदी ने यही कहा कि हम बाप दादा से पूछेंगे। जब बाप दादा से पूछा तो बाबा ने भी यही कहा कि हाँ विदेश में सेवा होनी चाहिए, और जयंती बच्ची जाए विदेश में सेवा करे। और जयंती बेन ने कहा कि मैं दादी जानकी को लेकर के जाऊंगी, क्योंकि वो पुणे में पुणे से दादी जानकी को जानते थे। अभी दादी जानकी केवल 3 क्लास पढ़ाई किया, वो हमेशा यही बात कहती थी कि मैं 10 वर्ष की थी तब तक तो वो भक्ति में ही रही, 10 वर्ष के बाद वो क्लास में बैठी और 13 उम्र हुई और क्लास छोड़ दिया। तो दादी ने कोई खास पढ़ाई भी नहीं किया, और विदेश में जाना जहां अंग्रेजी भी आनी चाहिए, उन्हों की भाषा कोई भी समझना चाहिए, वो कहां तक। फिर भी बाबा ने कहा कि हाँ जनक बच्ची जाए, और दादी ने कोई क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन बाबा ने ये कहा कि मधुबन का मॉडल जाकर के बनाना है। और उन दिनों में मधुबन में बाप दादा की ब्रह्मा बाबा की ट्रांसलाइट बदली करने का था, तो जो पुरानी ट्रांसलाइट निकली वो काफी बड़ी थी, और वो ट्रांसलाइट बड़ी दादी ने जयंती बेन को कहा कि क्या तुम ये ट्रांसलाइट ले जाएंगी। और हुआ क्या था कि जयंती बेन 4 साल वहां थे, 74 में दादी जानकी को प्रोग्राम मिलता है विदेश जाने का, जयंती बेन की फैमिली वहीं रहते थे। और जब दादी को दादी वापस आ नहीं सकी। 74 में दादी गई है, 78 तक दादी मधुबन में या तो इंडिया में नहीं आ सके, क्योंकि यदि वहां रहते हैं तो वहां की रेसिडेंसी हो सकती थी। तो दादी को यही भावना थी कि बाबा ने कहा है कि मधुबन का मॉडल बनाना है, और जयंती बेन जब आए थे तो ट्रांसलेट ले जाने की बात आई, और उन्हीं दिनों में एक छोटे से घर से, एक छोटे से कमरे से, घर तो नहीं कमरा था एक केवल, वो कमरे से उन्होंने शुरुआत की थी। विदेश में हर चीज बहुत बहुत महंगी होती है, और कोई इतने स्टूडेंट्स भी नहीं होते हैं वहां ये सेवा करना। वो तो दादी जब अपना अनुभव सुनाती थी तब हमें एहसास होता था कि नीचे में दादी और जयंती बहन रहते थे, और उसी घर में ऊपर के कमरे में काले लोग तीन रहते थे, और वो लोगों का खाना पीना तो हम सब जानते हैं कि कैसा खाना पीना होता था। और दादी को बचपन से लेकर के श्वास की तकलीफ हमेशा होती थी, और इतनी ठंडी में भी दादी को रहना, वो भी एक बल एक भरोसे के आधार से दादी ने स्वीकार किया था, नहीं तो जिसको अस्थमा होता है वो ठंडी में तो रह ही नहीं सकता है। और वो लोग काले लोग जो खाना पकाते थे, दादी को उनसे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि उनका नॉनवेज खाना, और वही घर, वहां तो कोई खिड़की इतनी होती नहीं, ठंडी इतनी होती है तो खिड़कियां भी नहीं खोलते हैं। तो दादी को पूछते थे कि तुम इतनी खांसी क्यों खाती हो, तो दादी कहती तुम लोग जकड़म बकड़म खाना बनाते हो ना, उसकी वजह से मेरे को ये तकलीफ होती है। एक ही बाथरूम वो लोग भी शेयर करते थे, दादी और जयंती बहन भी वही बाथरूम शेयर करते थे। सोच सकते हैं कि ऐसे माहौल में सेवा के लिए रहना एक चैलेंज की बात थी, लेकिन बाबा पर जो निश्चय था दादी का वो अटूट था। और कैसे दादी ने वो भी ओवरकम किया, और फिर बाजू का घर वो लोग लेने वाले थे, तो ट्रांसलाइट जयंती बेन ने कहा कि ना मैं ले जाऊंगी, दादी बहुत खुश होंगे क्योंकि इतनी बड़ी ट्रांसलाइट और वो भी मधुबन से मिल रही है। तो दादी पूछती थी बड़ी दादी कि क्या तुम लगा सकेंगी वहां, तो कहते हैं क्यों नहीं दादी, हम जरूर लगाएंगे, बाबा का कमरा बनाएंगे। तो इस रीति से मधुबन, दादी जानकी को हमेशा रहता था कि मुझे मिनी मधुबन बनाना है, लंदन को मधुबन का मॉडल बनाना है। और धीरे धीरे कैसे प्रगति हुई वहां, रोज क्लास बाबा के घर में चलता था, लेकिन सैटरडे संडे का क्लास बाहर चलता था। वो बाहर भी कम्युनिटी का एक हॉल था, वहां क्लास करते थे। रात को वो लोग वहां कितना गंदा करके जाते थे, सुबह में एक युगल ने जिम्मेवारी ले रखी थी कि वो सफाई करके हम यहाँ क्लास चलाएंगे, तो वो सुबह सुबह 5 बजे वहां जाते थे, 6 बजे भाई बहनों को आना होता था, 6:30 बजे मुरली चालू होती थी, 6 से 6:30 योग होता था, तो उसके पहले जाकर के सारा हॉल सफाई करना। ऐसे करते हुए भी 10 साल उन्होंने वो कम्युनिटी के हॉल में क्लास चलाया। फिर एक दिन दादी को ख्याल आया कि अपना हो तो, और एक वेयरहाउस था वो थोड़ा सस्ते में मिल रहा था, लेकिन वो एरिया इतनी अच्छी नहीं थी। जैसी जैसी एरिया होती है वैसी उसकी प्राइस भी होती है, और वो जहां आसपास में थे तो काले लोग ही थे, तो वो वेयरहाउस लिया गया। और शील दादी जो बॉम्बे में रहते थे, बाबा उसको बॉम्बे का गवर्नर कहते थे, शील दादी लंदन गए हुए थे, तो दादी ने भोग भोग मैसेज, वो दादी मैसेंजर भी थे, संदेशी थे, तो दादी जानकी ने कहा शील दादी को कि दादी आप पूछ करके आओ बाबा को कि ये वेयर हाउस है, हम इस प्रकार से उसका रेनोवेशन करके काम करेंगे। तो जब शील दादी ने बाबा को ये बात बताई दादी की, तो बाबा ने तुरंत कहा कि बाबा तो नई दुनिया बनाने आए हैं, बाबा को ये दुनिया को रेनोवेशन करने नहीं आए हैं, तो बच्ची को क्यों ख्याल आया रेनोवेशन करने का, बच्ची को बोलो कि नया ही बनाना है। और इतनी महंगाई वहां तो सोच भी नहीं सकते हैं, और इतना खर्चा करेगा कौन। तो भी अब बाबा का संदेश आया कि नया बनाना है। फिर तो बिल्डर ढूंढे गए, बजट निकाला गया, सब बातें हुई, मैप बनाया। तो मैप बनाया तो दादी ने यही कहा कि ऐसा मैप बनाओ, ऐसा बाबा का घर बनाओ जो हरेक समझे ये मेरा घर है। दूसरा, न मंदिर लगे, न चर्च लगे, न गुरुद्वारा लगे, ऐसा बाबा का घर बनाओ। तो इस प्रकार से नक्शा भी बना और काम शुरू होना था। तो बिल्डर कहे कि दादी आपको लोन लेनी पड़ेगी बैंक से। दादी कहती लोन लेना, उधार लेकर के मैं भगवान का घर बनाऊं, ये मेरे असूल के खिलाफ है। फिर दादी को कहा कि नहीं दादी, आपको लोन के पेपर तो साइन करने ही पड़ेंगे, इमरजेंसी में हम क्या करेंगे, आपके अकाउंट में तो इतना पैसा है नहीं। फिर भी दादी को बिल्कुल मंजूर नहीं था, लेकिन दादी ने साइन किया कि ओके चलो, लेकिन मैं लोन लेंगी नहीं। दादी को इतना दृढ़ निश्चय था कि ये बाबा का कार्य है, बाबा करेगा। और सचमुच में ऐसे ही होता था, जिस समय पेमेंट करने का वक्त आता था वहां तो डायरेक्ट बैंक में जमा कर देते हैं, एक अकाउंट से बाबा के अकाउंट में डायरेक्ट चला जाता है जो फिक्स किया होता है। तो ऐसे ही, और वहां के भाई बहनों ने भी ये ठान लिया था कि हमें इतना परसेंटेज हर मास बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। जो भाई बहने नौकरी नहीं करते थे, उन्होंने भी सोचा कि जब तक बाबा का घर बनता है तब तक हम पार्ट टाइम जॉब करें। दूसरे जिन्हों के पास अच्छी जॉब थी, उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं ओवरटाइम करें और वो जो पैसा हमें मिले वो बाबा के अकाउंट में हम जमा करें। ये समय हमें मिला हुआ है भाग्य बनाने का, तो हम क्यों नहीं बनावे। और दादी को यही पक्का दृढ़ विश्वास था कि बाबा के बच्चे जरूर बाबा का स्थान बनाएंगे। और सभी के अंदर यही उमंग उत्साह रहता था। और हर गुरुवार को दादी साइट पर जाते थे, जितने भी वर्कर्स काम करते थे सबको दादी अपने हाथों से भोग बांटते थे। और हर गुरुवार को जो प्रोजेक्ट के निमित्त होते थे उनके साथ बैठ करके 10-15 मिनट भी दादी ज्ञान की चिट-चैट जरूर करते थे। तो ऐसे करके कैसे प्रोजेक्ट बना और मकान बन गया, और बड़ी दादी जी उद्घाटन करने के लिए भी पहुंचे। तो कहने का भाव, जिस समय ग्लोबल हॉस्पिटल बना है, ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, लंदन के हाउस का नाम दिया था ग्लोबल कोऑपरेशन हाउस, और नैरोबी में बना था ग्लोबल म्यूजियम, और अपने पास बना था ग्लोबल हॉस्पिटल। तो ऐसे 1991 में ये सब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे। तो इस रीति से दादी को बहुत निश्चय होता था हर प्रोजेक्ट में, हर बात में दादी पीछे नहीं हटते थे। जो करना है वो दादी को यही होता था, अभी करना है, कल किसने देखा। एक बार मैं अमेरिका में थी, मुझे भेजा था दादी ने कि तुम जाकर के वहां सेंटर शुरू करो। और मैं जब वहां पहुंची हूं, मेरी बहन के घर में जाकर के रही और सेवा तो अच्छी हुई। और दूसरी बार फिर दादी ने मुझे भेजा कि उन्होंने बोला कि आप लोग एक मकान किराए पर रखो, मैं बहन को भेजूंगी। और दूसरे साल फिर मुझे ही भेजा, लेकिन एक छोटा सा अपार्टमेंट, दो बेडरूम का, और अपार्टमेंट में लोग जल्दी नहीं आते हैं। फिर भी शुरुआत तो ऐसे ही होती है, छोटे से ही शुरुआत होती है। फिर दादी ने, मैंने दादी को बोला कि दादी अभी 2 साल इस मकान फ्लैट को पूरा होगा, क्या करे आगे। तो दादी कहती हैं कि और सोचो, क्लास वाले को पूछो क्या विचार है उन्हों का। फिर दादी ने मुझे पूछा, तेरी बहन का घर कैसा है? मैंने बोला, दादी बहन का घर तो बहुत अच्छा है, कितने बच्चे हैं? मैंने कहा, दादी एक ही बेटा है उसको। तो कहती है दादी कि एक बेटा है और वो एक बेटा अपना घर बना सकता है, और बाबा के इतने बच्चे, क्या वो बाबा का घर नहीं बना सकते हैं? तो मैंने फिर क्लास में ये बात दादी की सुनाई सबको कि इतने सारे बाबा के बच्चे मिल करके यदि बाबा का घर बनावे तो क्या नहीं हो सकता है। और दादी जो कुछ भी बोलते थे, मैंने ये अनुभव किया है, मैं दादी के साथ 30 साल रही और वो 30 साल के मेरा ये अनुभव है कि दादी जो बोलते थे वो सिद्ध होता था। जैसे कि उस आत्मा को वचन सिद्धि का वरदान था। कभी कभी इतना इम्पॉसिबल बातें लगती थी और वो इम्पॉसिबल कैसे भी पॉसिबल हो जाता था। हम कहते थे कैसे हो सकता है, लेकिन दादी को दूसरा संकल्प आता ही नहीं था। जो होने वाला होता था वही संकल्प उस आत्मा को आता था। तो वो सचमुच में दादी ने प्रकृति को भी, कैसे बचपन से लेकर के अपने शरीर को भी, कैसे उसके ऊपर भी विजय प्राप्त की। एक बार दादी अपना अनुभव सुना रहे थे कि सारी रात दादी को बहुत खांसी थी, बहुत खांसी थी, और वो सारी रात सो नहीं पाए थे। और सुबह में बाबा, जैसे कि दादी को यहां से सकास, अपने कमरे से दादी को सकास भेजते थे, दादी फील करते थे कि बाबा ने जैसे कि इंजेक्शन लगाया और फिर दादी को थोड़ा आराम आया और दादी ने थोड़ी नींद किया। शुरू से लेकर के, क्योंकि जब माउंट आबू में आए और ठंडी तो बहुत थी, आज कोई इतनी ठंडी नहीं है जो शुरुआत के दिनों में ठंडी थी, साधन भी नहीं थे ठंडी के, उसको ओवरकम कर सके। तो अस्थमा आप समझ सकते हो कि बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन दादी का जो एक बल, एक भरोसा था, उसमें दादी को कोई नहीं बीट कर सकता था। बहुत निश्चय बाबा में। बाबा मुरली में जो भी बातें कहते थे सेवा के लिए, स्व उन्नति के लिए, और दादी हमेशा उसको करने के लिए तत्पर रहते थे। और जहां जहां प्रोग्राम होता था वहां दादी हमेशा हाजिर हो जाती थी। कभी ये नहीं समझते थे कि मैं बहुत दूर बैठी हूं। बड़ी दादी का एक बुलावा, दादी हाजिर हो जाते थे। हम लोग तो सोचते ही भारी हो जाते हैं, 8 घंटा 9 घंटा फ्लाइट में बैठना, लेकिन दादी ने कभी भी चेहरे से भी ये नहीं दिखाया कि उसको ये प्रोग्राम पसंद नहीं है, कि ये नहीं जाना चाहते हैं। साल में 3-4 बारी आ जाना कम बात नहीं होती है। और कभी कभी तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा टाइमिंग्स और उनके देश का टाइम बहुत डिफरेंस होता है। कभी दादी अमेरिका जाकर के लंदन में आए तो वहां का टाइमिंग्स और लंदन के टाइमिंग्स में भी 5-6 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। और हम लोग जिसको कहते हैं जेटलेग लगना, हम लोग तो सो जाते हैं, लेकिन दादी ने कभी भी, दादी को कहती मुझे पता ही नहीं जेटलेग क्या होता है, माना कैसे अपने प्रकृति को जिस स्थान पर है उस स्थान के अनुरूप बना लेना। भारत और लंदन में भी 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है, क्योंकि जब हमारा अमृत वेला होता है तब उनका रात आधी रात होती है। आप सोच सकते हैं क्योंकि हम 5.5 घंटा आगे हैं, लेकिन तो भी दादी ने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब मेरा रेस्ट का टाइम है। जब सेवा है तो सेवा में दादी हाजिर हो जाती है। कभी कभी तो आते ही गाड़ी से उतरते ही सीधा प्रोग्राम में जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होना है, चाय पीना है, ये भी नहीं। माना इतना अपने ऊपर दादी का कंट्रोल कहो, या दादी ने अपनी कर्मेंद्रिय को इतना डिसिप्लिन सिखाया था कि कर्मेंद्रिय भी उनको बहुत सहयोग देती थी। मैं इतने साल दादी के साथ रही, मैंने दादी को कभी भी दूसरी रोटी खाते हुए नहीं देखा है। एक ही रोटी खाना है उसको, दूसरी रोटी कभी भी नहीं खाएंगे। बीच बीच में खाने की तो कोई आदत ही नहीं थी उनको। मैंने बहुत डिसिप्लिन से शरीर को भी चलाया। और जब ज्ञान सरोवर बना तो मधुबन से ज्ञान सरोवर हम आते थे, ज्ञान सरोवर से मधुबन जाना होता था। दोपहर का खाना दादी अभी यहां खाते थे, तो जब तक सब कारोबार उतर जाते थे फिर भोजन करते थे। जब लोग 3 बजे दोबारा उठ करके चाय पीने के लिए आते थे, दादी 3 बजे 2:30 बजे भोजन के लिए जाते थे। हम दादी को कहते थे दादी टाइम पर तो खाना खाओ, इतना लेट क्यों खाते हैं? पता है दादी का जवाब क्या होता था? कहती है डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा है तो वो बीच में ऑपरेशन को छोड़ करके भोजन करेगा क्या? आप क्या बोलेंगे उस समय? माना दादी को है कि जो आत्मा ही दादी को मिलने आती है उनको पूरा संतुष्ट करना। जब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है तब तक दादी अपना सोचते नहीं थे। एक बार दादी ने हमें अपना अनुभव सुनाया था, कहती वो अनुभव मेरे आंखों के सामने हमेशा आता है। एक बार बाबा ब्रह्मा बाबा झोपड़ी में लोगों से मिल रहे थे और बहुत लंबी क्यू थी, और दीदी ने देखा कि बाबा थोड़ा थक गए हैं, और दीदी ने बोला बाबा थोड़ा आराम कर लो, आप बहुत लोगों से मिले हैं सारा दिन। तो कहा नहीं बच्ची एक संतरा ले आओ। फिर बड़ी दीदी संतरा ले आए और छील करके बाबा को दिया, और वो संतरा बाबा ने खाया। बहुत ही बाबा की याद में वो संतरा जैसे कि बाबा ने खाया, बाबा में नई एनर्जी आ गई। और फिर दीदी को बोला कि दीदी अब जो भी बाकी है उन सबको बुलाओ, बाबा मिलेगा। तो दादी जानकी कहती, वो सीन हमेशा मेरी आंखों के सामने रहता है कि बाबा ने भी कभी इग्नोर नहीं किया। मैं कैसे कर सकती हूं, मेरा बूढ़ा बाबा इतनी उम्र में भी लोगों से मिलता रहा। शांतिवन बना, हम लोगों को शांतिवन से पांडव भवन, पांडव भवन से शांतिवन, ज्ञान सरोवर से शांतिवन आना जाना लगा रहता था। दादी भोजन का टाइम होता था, नाश्ते का टाइम होता था, तो दादी कहते थे 11 बजे हमें वहां पहुंचना है ज्ञान सरोवर में या पांडव भवन में, तो कहती थी मैं नाश्ता रास्ते में कर लूंगी। आप देखते रास्ता कैसा टेढ़ा बांका है, लेकिन अपना समय कैसे बचाना, वो कार में नाश्ता कर लेते थे, कार में भोजन भी कर लेते थे। दादी को कभी भी ये नहीं लगता था कि मुझे डाइनिंग टेबल पर ही बैठ करके खाना खाना है, नहीं। और नाश्ते में भी कोई एक ही चीज होती थी, एक डिब्बी में ले लिया और दादी ने खा लिया। गरम गरम खाना है ये भी उसको कभी नहीं रहता था। तो बहुत सिंपल लाइफ हमने दादी की देखी। सिंप्लिसिटी जो दादी में थी जबरदस्त थी, और थिंकिंग बहुत पावरफुल थी हमेशा ही। और कोई भी काम, दादी को काम चलाओ पसंद नहीं आता था। कोई भी कार्य करते थे तो बहुत ही एक्यूरेसी पसंद आती थी दादी को। छोटी छोटी बातों में भी दादी को एक्यूरेसी बहुत पसंद थी। टाइम में भी दादी बहुत एक्यूरेट थे। हमने कहा किसी का संकल्प चलाने के भी निमित्त नहीं बनना। मेरे कारण किसी के संकल्प चले वो भी उनको पसंद नहीं था, क्योंकि मैं किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त भी क्यों बनूं? तो हमेशा उनके पास अपने जीवन के आदर्श हमेशा साथ में रहते थे। विदेश में रहते हुए भी दादी ने कभी भी साइट सीन नहीं किया है। कभी मॉल में गए हो, कभी कोई दुकान में गए हो, कभी भी नहीं। हम दादी को कभी कभी कहते थे कि दादी सारी दुनिया डिज्नी वर्ल्ड देखने के लिए आती है, आप इतनी बार अमेरिका जाते हो और आपने डिज्नी वर्ल्ड नहीं देखा है। दादी कहती है मुझे इसको देख करके क्या मिलेगा। कभी कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती थी दादी को। इतनी सिंपल लाइफ। एक बार हम दादी के लिए चप्पल खरीद के ले आए। हमको ये तो मालूम था कि दादी को अगर असली प्राइस बताएंगे तो वो कभी भी नहीं पहनेंगे, तो हमने थोड़ा झूठ बोला। दादी को बोला कि दादी ये 500 रुपये की चप्पल है। दादी कहती 200 रुपये की। हालांकि थी 500 रुपये की चप्पल और बोला 200 रुपये की चप्पल है। दादी कहती वापस दे आओ। हमने कहा दादी वापस नहीं लेंगे दुकान वाले, तो उसके बदले में कुछ तो लेना पड़ेगा। अभी 500 रुपये की चप्पल भी दादी को 200 रुपये की चप्पल भी महंगी लगे। और उसी समय फिर दादी ने कहा हमारे घर में जो चप्पल बनाता है ना उस भाई को बुलाओ, और उसको बोला कि तुम कितने रुपये में बनाएगा चप्पल, मेरे लिए तुम घर की बनाओ चप्पल और मैं वही पहनूंगी। ये बाहर से 200 रुपये की चप्पल मेरे लिए ले आई। तो 500 तो कह भी नहीं सकते थे दादी को। मना दादी को बिल्कुल फालतू खर्चा लगता था ये भी। हम कहते थे दादी कोई हमें गिफ्ट दे रहा है, क्योंकि मैं जाती थी अमेरिका तो मुझे पूछते दादी के लिए क्या ले जाओगे, आप ये ले जाओगे, आप वो ले जाओगे। अभी मैं ना करूँ तो उनकी भावना लगता था कि मैं मना कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है दादी खुद तो पहनेंगे नहीं, दूसरों को ही दे देंगे। लेकिन दादी की इकोनॉमी बहुत थी। जब कोई शरीर छोड़ता था और उसके ऊपर जो बहुत सारे हार चढ़ते थे वो भी दादी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अभी शरीर तो छूट गया, आत्मा तो चली गई, फिर ये हार इतने सारे चढ़ाने से क्या मतलब। मुझे कहते थे दादी कि मैं जब शरीर छोड़ू ना, मेरे ऊपर एक गुलाब का फूल रख देना, कोई हार चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और ड्रामा में वही हुआ, क्योंकि 20 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ और 27 तारीख को दादी चले गए, तो कहीं से भी हार आने की मार्जिन ही नहीं थी, लोगों को ही आने की मार्जिन नहीं थी, तो खर्चा ही नहीं करने दिया उस आत्मा ने अपने प्रति। तो इकोनॉमी बहुत उसके अंदर भरी हुई थी, मैंने हर चीज में दादी इकोनॉमी। कभी कभी दो सब्जी घर में बनती थी दादी, तो दोस्त मुझे पूछती दो सब्जी क्यों बनाई, तो मैंने कहा दादी बड़ी दादी की ये ट्रेनिंग है, क्योंकि दादी यही घर में मधु शांति वन में या कोई भी हमारे घर में दो सब्जी तो बनती है, एक दाल एक सूखी सब्जी, कभी कभी दो सब्जी सूखी भी बनती है, तो किसी को एक सब्जी अच्छी नहीं लगे तो वो दूसरी सब्जी तो खा सकता है ना, ये बड़ी दादी का असूल था। तो मैं दादी को ये कि दादी आपको एक सब्जी अच्छी नहीं लगे, अब दूसरी सब्जी से तो आप अपनी रोटी खा सकते हो ना। क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और मधुबन में सेवा के लिए आते थे, तो हम लोग गुजराती होने के कारण मधुबन में कई चीजें हम लोगों को पसंद नहीं आती थी। तो एक बार बड़ी दादी ने मुझे पूछा कि तुमने क्या खाया, तो मैंने दादी को बोला दादी आज मेरे खाने जैसा कुछ था नहीं। तो दादी ने कहा क्यों, मैंने कहा दादी गुजराती लोग हैं ना खिचड़ी के साथ कढ़ी खाते हैं और यहाँ तो मूंग की दाल बनती है। तो दादी ने फिर भोली दादी को आदेश दिया कि तुमको रोज शाम को कढ़ी बनानी है और तीनों टाइम आलू की सब्जी बनानी है। ये कन्याएं मधु बनाती है, महीना महीना रहते हैं और अपना आचार लेकर के आती हैं और उनसे ही खाती हो तो आप हमेशा। तो अभी मधुबन में रोज तीनों कॉम्प्लेक्स में कढ़ी बनती है, आलू की सब्जी बनती है। तो दादियों का कितना ध्यान रहता है कि कैसे सभी संतुष्ट होकर के जाए। तो आप सभी ऐसे समय पर मधुबन में भट्टी करने के लिए आए हो, ये साल का एंडिंग है और नए साल तुरंत बहुत नजदीक में आने वाला है, तो हम ये भट्टी से ऐसा अपने आप को कोई न कोई, मैं नहीं कहूंगी प्रतिज्ञा करें, लेकिन अपनी जीवन शैली में ऐसी बातों को डाल देवे ताकि हम नेचुरल पुरुषार्थ हमारे जीवन में आ जाए, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़े। हमने दादियों को देखा है कि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं किया है, जबरदस्ती पुरुषार्थ नहीं किया है, उनके जीवन में नेचुरल अटेंशन था। पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, अटेंशन है। अगर हमारा हर बात में, हमारी दिनचर्या में, हमारे बोलचाल में यदि अटेंशन है तो पुरुषार्थ और कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन है। हमारे मन के अंदर भी जो संकल्प चलते हैं, वो संकल्प के ऊपर भी यदि हमारा अटेंशन है तो वो अटेंशन और कोई बातों को अंदर जाने नहीं देगा। जैसे कहीं पर भी सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी का काम क्या होता है कि भाई कोई अनजान व्यक्ति आया उसको पूछने का कि आप कहाँ जाने वाले हो, क्यों आए हो, किससे मिलना है ना। हमारे मन के अंदर भी अगर हम अटेंशन रूपी पहरेदार को रख दें तो वो पहरेदार कोई भी ऐसा संकल्प यदि उठेगा तो हम अपने आप से पूछो कि क्या ये संकल्प इस समय आवश्यक है, ये जरूरी है। नहीं जरूरी है तो हम अंदर घुसने ही ना देवे। जैसे सिक्योरिटी वाला कोई अनजान को अंदर घुसने नहीं देता है तो हमारे मन के ऊपर भी अटेंशन रूपी पहरा लगा दे तो पुरुषार्थ आसान हो सकता है। और आप सबको भट्टी में बहुत नई नई बातें मिली होगी और उन बातों को अभी आप अंडरलाइन करें अपने लिए कि इसमें से मुझे किन किन बातों का अटेंशन रखने की आवश्यकता है और वो बातें जीवन में धारण करने का एक दृढ़ संकल्प ले कि हाँ हमें इसको अपने जीवन में कैसे भी करके प्रैक्टिकल करना है। क्योंकि जब हम बाबा के पास आए थे तब हमें कुछ आता था, हमारा जीवन भी कोरा कागज जैसा था और बाबा ने उस कागज के ऊपर बहुत बातें लिखी हैं, लेकिन मैंने मेरे जीवन में कितना अंडरलाइन किया है। हम हरेक अपने लिए, हम अपना हरेक, हम सभी खुद के शिल्पकार हैं, हम अपनी मूर्ति को बनाना जानते हैं। अब तक हमने दूसरों को ही देखने में समय गवाया है, लेकिन अब हमें अपनी मूर्ति बनानी है। और मैं मेरी मूर्ति कैसी बनाना चाहती हूँ, मुझे कैसी मूर्ति पसंद है वैसी मूर्ति मैं अपनी बनाऊं, कौन से श्रृंगार से मुझे अपने को सजाना है। स्थूल श्रृंगार तो परमानेंट नहीं होता है, लेकिन ये अलौकिक श्रृंगार जिसको गुण कहे, शक्तियां कहे, उनसे हमें अपने आप को सजाना है। मेरी मूर्ति मुझे स्वयं बनानी है। और आप जैसे भी मार्केट में जाते हैं, मूर्तियां आप देखते हो तो हर मूर्ति की प्राइस अलग अलग होती है। मुझे कौन सी मूर्ति बननी है और मुझे कौन से अलंकारों से अपने आप को सजाना है तो मेरी वैल्यू मुझे बढ़ानी है। मेरी वैल्यू कोई और नहीं बढ़ाएगा। मुझे सोने की मूर्ति बनना है या चांदी की मूर्ति बनना है या तांबे की बनना है या पत्थर की, लोहे की, कौन सी मूर्ति मुझे बनना है। और जैसी मूर्ति होती है वैसे उसके अलंकार भी होते हैं, तो उसी आधार से उसकी वैल्यू होती है। तो मुझे भी मेरी वैल्यू को कितना मुझे बढ़ाना है मेरे हाथ में है। तो आप सभी इस भट्टी से ऐसा दृढ़ संकल्प करके जाए कि जो अब तक मेरे में कमी है, कमजोरी है, वो कमी कमजोरी को मुझे खत्म करना है। जैसे नया साल आता है तो नया चौपड़ा शुरू करते हैं, मैं मेरे जीवन का भी नया चौपड़ा शुरू करूं। यहां से जब आप जाओ अपने शहर में, अपने गांव में, आपको देख करके लोगों को लगे कि ये तो कुछ बदल करके आया है, इसमें कुछ नवीनता दिखाई देती है, ये परिवर्तन हो गया है, ये यदि आपको सर्टिफिकेट देवे तो समझो कि आपने कुछ इस भट्टी से प्राप्ति की है। क्योंकि अब तक हम बाबा से सुनते आए हैं कि बच्चे समय बहुत कम है, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। और बाबा ने जब ये कहा कि अगली दिवाली नहीं आएगी, उस कहने के पीछे बाबा का कुछ राज था। अभी भी हम ये समझे कि समय बहुत नाजुक चल रहा है और समय पुरुषार्थ के लिए मिले, अभी जब हमें समय भी सहयोग दे रहा है, प्रकृति भी सहयोग दे रही है, ये शरीर भी सहयोग दे रहा है, तो क्यों नहीं हम अपने को नेचुरल पुरुषार्थ में ऐसा पुरुषार्थ बनावे जो नेचुरल हो जाए। नहीं तो समय भी ऐसा नाजुक पता था कि हम 2 साल मधुबन में नहीं आएंगे। प्रकृति के तत्वों ने भी तो परीक्षा ली, कोविड ने भी हमें बंद कर दिया घर में, पता था हमें। तो जो समय हमारे पास है, वो समय को मुझे कितना सफल करना है मेरे हाथ में है। कभी कभी हम समय को सफल करते हैं, कभी समय को बर्बाद करते हैं, और कभी कभी तो समय को भी मारते हैं, किल करते हैं। कितना समय सफल होता है हमारा। दादी हमेशा एक एग्जाम्पल दिया करते थे, ब्रिजमोहन भाई के पिताजी थे जिसका नाम था आनंद, और उनके साथ दादी जी कभी कहीं सेवा में जाते थे तो भाई साहब किसी को ज्ञान सुनाने लगे, बस आई, एक बस गई, दूसरी बस गई। दादी कहती थी कि भाई साहब हम जाए तो कहते ये व्यक्ति वापस थोड़े ही मिलेगा, हम दूसरी बस में चले जाएंगे तो इसका तो उद्धार कर ले। जो सामने है, जो सेवा भी सामने है, वो सेवा से हम अपना भाग्य उज्जवल बना दे। आज सेवा है, कल कोई और सेवा करेगा। आज मुझे जो भाग्य मिल रहा है वो भाग्य को तो मैं बना लूं, लेकिन कभी कभी हम अपने भाग्य को, भाग्य से हम दूर हो जाते हैं। सेवा मिलती है तभी भी हम कहते हैं कि मुझे नहीं, इनको कहो, तो मेरे भाग्य से तो सेवा चली गई। तो अभी संगम युग में बाबा ने हमें भाग्य बनाने की कलम भी दिया है, जितना भाग्य बनाना चाहें उतना भाग्य बना सकते हैं, जितना उज्जवल भाग्य बनाना चाहे उतना उज्जवल, इतना ही ऊंचा हम भाग्य बना सकते हैं, वो सब मेरे हाथ में है। तो ये घड़ी, संगम युग की घड़ियां बहुत बहुत मूल्यवान हैं, अमूल्य हैं, वो हमारे हाथ से चली न जाए, इसका हमें ख्याल रखना है। ओम शांति।
चलती आज के संसार में रहना है मत हमारी मदद भगवान। और एक
चलती यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सर राह चलती चलती, सर राह चलती चलती, वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है मेरी राह।
सिंचाई, सफाई, सादगी।
जो कहीं गई ना मुझसे, जो कहीं गई ना मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना, कि फसाना बन गई है, कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते।
जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से जहान को बाप दिखाई पड़ेगा।
परमात्मा बाप
चलती सर।